بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، السلام علیکم۔ فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا آج یوم شہادت ہے، اس مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کے انتخابی نتائج اور اس کے بعد کی صورتحال۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 11 مئی کو پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کے انتخابی نتائج تقریباً آ چکے ہیں۔ چند ایک حلقوں پر ابھی جو سرکاری نتائج کی بات ہے اس کے اعلانات ابھی باقی ہیں، لیکن مجموعی طور پر تصویر صاف ہو چکی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف کے بارے میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وزیر اعظم وہی بنیں گے اور مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی، اگرچہ اسے حکومت بنانے کے لیے کچھ جماعتوں کی حمایت ضرور درکار ہوگی یا آزاد امیدوار جو کنگ میکر کے روپ میں اس وقت ابھر کر سامنے آئے۔ بہرحال یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور جتنی سیٹیں نواز شریف اور ان کی جماعت نے حاصل کی ہے اس کے پیش نظر ان کے لیے حکومت سازی کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں۔ پنجاب میں بھی انہوں نے 2/3 واضح اکثریت حاصل کر لی ہے اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور صوبہ سندھ میں تصویر مختلف ہے، بلکہ بلوچستان میں یہ کہا جائے وہاں ہنگ پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے اور وہاں ممکن ہے کہ مخلوط حکومت کسی کی بھی بن جائے، جس میں نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو انتخابی صورتحال، لیکن اب پاکستان کی آنے والی حکومت کے سامنے کون کون سے مشکلات اور چیلنجز درپیش ہوں گے اور جو وعدے میاں نواز شریف صاحب نے انتخابی مہم کے دوران قوم اور عوام سے کیے اس کو کس طرح سے پورا کر سکیں گے، اور بھی کچھ سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ مگر یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور دیگر مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
پاکستان میں انتخابات منعقد ہوئے اور کچھ ناخوشگوار واقعات کے باوجود کامیاب انتخابات رہے۔ عوام نے پولنگ میں حصہ لے کر کسی امیدوار کے حق میں ووٹ دینے سے زیادہ جمہوریت کے حق میں ووٹ دیا اور یہ نعرہ 400 سنائی دیا کہ ووٹ فار پاکستان۔ انتخابات کے نتائج آ چکے ہیں اور حکومت سازی سے متعلق سرگرمیاں شروع ہونے والی ہیں۔ نواز شریف کو ملک اور بیرون ملک سے مبارکبادی کے پیغامات مل رہے ہیں۔ نواز شریف کے لیے وزارت عظمیٰ سنبھالنے اور حکومت سازی کرنے کا یہ تیسرا موقع ہے اور انہیں ملکی حالات کا اندازہ بھی ہے۔ نواز شریف جن حالات میں حکومت سنبھال رہے ہیں وہ عام حالات نہیں ہیں۔ پاکستان انتہائی پیچیدہ مشکلات کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ پاکستان کے حالات پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ یا تو کوئی جادوئی چھڑی ہو جس کے گھماتے ہی سارے مسائل غائب ہو جائیں، یا پھر ہر مشکل کی ماہیت اور نوعیت کا بغور جائزہ لے کر متعلقہ امور کے ماہر کی خدمات حاصل کی جائیں۔ صرف روابط اور تعلقات کی بنیاد پر عہدوں کی تقسیم اور تفویض کی کوشش نہ کی جائے۔ پاکستان معاشی بدحالی سے دوچار ہے اور معیشت کے سلسلے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کسی مشین کی مانند ہوتی ہے جس کے مختلف پرزے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد سے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی خامی سے متاثر ہوتے ہیں۔ کسی ایک پرزے کو درست کرنے کے لیے پوری مشین کے سسٹم کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان کو انرجی کے شعبے میں جس بحران کا سامنا ہے اس کے براہ راست اثرات معیشت پر پڑ رہے ہیں اور سستی انرجی عوام کی شدید ضرورت ہے۔ پاکستان کو بہت عرصے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کی بڑی پیچیدہ مشکل کا سامنا ہے۔ خیبر پختونخوا، فاٹا، بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کے واقعات سب سے زیادہ ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان میں ایک تاثر یہ ہے کہ دہشت گردوں نے صوبہ پنجاب میں اپنے محفوظ ٹھکانے بنا رکھے ہیں اور وہیں سے وہ ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گردانہ حملے کرتے ہیں۔ ان دہشت گرد تنظیموں کے سلسلے میں ایسی مؤثر کارروائی کرنا کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر حل ہو جائے بہت اہم، ضروری لیکن ساتھ ہی بہت مشکل کام ہوگا۔ افغانستان کی صورتحال دہشت گردی اور ڈرون حملوں کا مسئلہ ایسا ہے جسے حل کر پانا آسان نہیں ہوگا۔ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے چین کے ساتھ قدیمی دوستی قائم رکھتے ہوئے ہندوستان سے دو طرفہ مسائل پر دانش مندانہ پیش رفت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ نواز شریف کی فتح پر ہندوستان کی جانب سے دیے گئے تہنیتی پیغامات نئی دہلی کی اچھی امیدوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے تہنیتی پیغام میں دوستی اور تعاون کی خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ جواب میں نواز شریف نے یقین دلایا ہے کہ پاکستان ہمسایہ ممالک سے دوستانہ تعلقات چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جنگ مسائل کا حل نہیں، باہمی تنازعات مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حل کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ آئندہ سال افغانستان سے اپنی فوجیں بڑی چالاکی سے واپس بلا رہا ہے۔ چالاکی سے فوج واپس بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے افغانستان سے اہم اسٹریٹیجک معاہدے کا راستہ صاف کر لیا ہے، جس کی بنیاد پر اسے 9 چھاونیاں دستیاب رہیں گی۔ اس طرح وہ افغانستان میں اپنا مضبوط ٹھکانہ تو قائم رکھے گا، لیکن فوجوں کی واپسی کی وجہ سے امن و امان کے تعلق سے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی۔ امریکی فوجوں کی واپسی کے بعد پاکستان کے لیے نئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ڈرون حملوں کا مسئلہ بہت اہم ہے اور اس کے خلاف پوری پاکستانی قوم احتجاج کر چکی ہے۔ نواز شریف نے انتخابی مہم کے دوران خود بھی ڈرون حملوں کے سلسلے میں سخت موقف اختیار کیا تھا۔ وزیراعظم بن جانے کے بعد اب ان پر ذمہ داری ہوگی کہ اس موقف کو عملی جامہ پہنائے۔ مجموعی طور پر یہ کہنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کے لیے انتخابات جتنا بڑا اور مشکل کام تھا، حکومت سازی کے بعد ملک چلانا اور اطمینان بخش انداز میں چلانا اس سے بدرجہ مشکل اور دشوار کام ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف حکومت اس امتحان میں کتنی کامیاب ہوتی ہے۔
ناظرین، اب چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے انتہائی سینئر اور سرکردہ صحافی اور تجزیہ نگار پروفیسر عرفان صدیقی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
عرفان صدیقی صاحب، انتخابات سے پہلے بھی میں آپ کے کالم پڑھتا رہا اور آج بھی میرے سامنے ایک کالم ہے جس کا عنوان ہے یہی ہونا تھا، کس بنیاد پر آپ نے یہ کہا؟
دیکھیے، پاکستان کے اندر جو سیاسی معاملات پہ نگاہ رکھنے والے مبصرین تھے وہ بڑی حد تک تقسیم ہو چکے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت سے اندازے، بہت سی قیاس آرائیاں، بہت سے تخمینیں، بہت سے تجزیے جو کیے گئے وہ توازن میں نہیں رہے، اعتدال سے ہٹ گئے اور یک رخے سے ہو گئے، اور یوں لگا جیسے عمران خان صاحب کی تحریک انصاف جو ہے وہ سب کچھ بہا لے جانے والی ہے۔ اس کے لیے خود انہوں نے، عمران خان صاحب نے لفظ تجویز کیا، پسند فرمایا سونامی کا، کہ ایک ریلا آ رہا ہے جو سب کچھ پرانی جماعتوں کو بہا کے لے جائے گا۔ انہوں نے تبدیلی کا نعرہ دیا، انقلاب کا نعرہ دیا، اور یہ تصور پیش کیا کہ دونوں بڑی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، آزمائی جا چکی ہیں، اقتدار میں رہ چکی ہیں، اب ان میں کوئی نیا پن آنا چاہیے، کوئی نئے لوگوں کو آزمانا چاہیے، نئی پارٹی کو آزمانا چاہیے۔ ان کا یہ نعرہ بڑا مقبول بھی ہوا، ان کے جلسے بہت بڑے بڑے ہوئے، اور پاکستان کا جو میڈیا تھا اس نے بڑھ چڑھ کے ان کا ساتھ دیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میڈیا نے بھی اعتدال کا راستہ چھوڑا، غیر جانبداری کا راستہ چھوڑا، توازن کا راستہ چھوڑا، اور مکمل طور پر ان کے رنگ بے رنگ گئے اور انہیں کو اجالنے اور انہیں کو اچھالنے میں مصروف ہو گئے۔ تو یوں لگا جیسے پاکستان تحریک انصاف بڑی کامیابی حاصل کرنے والی ہے، لیکن جو مبصرین زمینی حقیقتوں پہ نگاہ رکھے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے کہ اس پارٹی کا، جو یہ نومولود پارٹی ہے، نومولود ان دا سینس کہ اس دفعہ وہ بھاری بھرکم ایک انداز سے سامنے آئی ہے، تو اس کی عمر اب 17-18 سال ہو چکی ہے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا سارا جوش و خروش اور اس کی ساری رونقیں، اس کی ساری توجہ، اس کی ساری چہل پہل، اس کی ساری مرکزیت پاکستان کے 2-3 شہروں تک محدود ہے، اور شہری حدود سے جو ہی ہم نکل کے قصبوں میں جاتے ہیں اور دیہات میں جاتے ہیں تو اس کی اپیل ختم ہو جاتی ہے، اور لوگ وہی پرانے دھڑوں میں، دو جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو ہم لوگ، جن میں میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسے تھے جو ان زمینی حقیقتوں کا ادراک رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب تحریک انصاف ٹھیک ہے، بڑی مقبول صحیح، اس کا بڑا جوش و خروش صحیح، شہروں میں اس کا بڑا ایک تنتنا بانک پن صحیح، لیکن جہاں ووٹ لینے کی نوبت آئے گی، वोटर्स के निकलने की नौबत आएगी तो देहात मैटर करेंगे। आपको पाकिस्तान के जोग्राफिए का अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ कोई 70% से आबादी, ज़ायद आबादी जो है वो देहात में रहती है। तो यूं हकायक पे निगाह रखने वाले लोग जानते थे कि तहरीक इंसाफ पंजाब की हद तक कोई बड़ा कारनामा सरंजाम नहीं दे सकेगी। इमरान खान साहब ने जो एक गलती की वो ये थी कि उन्होंने नवाज शरीफ को तो बहुत निशाना बनाया, उनकी कारकर्दगी को, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को भी निशाना बनाया, लेकिन वो मरकजी हुकूमत या जरदारी साहब की हुकूमत के बारे में भूल गए। जो पब्लिक का इंप्रेशन था वो ये था कि जरदारी साहब की हुकूमत ने करप्शन भी की, नाअहली भी की, बिजली का बोरान भी पैदा किया, मामलात को न सुलझाया, दहशतगर्दी को न सुलझाया, अमरीका के साथ उसने एक बराबरी की बुनियाद पर या एक खुददार मुल्क की बुनियाद पर ताल्लुकात ना रखे। ये सारी खराबियां थी जो नीचे ट्रैवल कर रही थी, लेकिन खान साहब ने अपने सियासी मफादात की वजह से ज़्यादा तवज्जो जो रखी वो पंजाब पे और शरीफ खानदान पे रखी। इसका भी कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। दूसरी एक चीज़ जो उनके यहाँ नजर आई, जो हमारे यहाँ की जो अकदार हैं या जो तहजीबी और सकाफती हमारे देहात का या शहरों का भी एक रंग होता है, वो ये है कि वो नाशाइस्तगी को पसंद नहीं करते लोग। उन्होंने अपने हरीफों के बारे में जो लबो लहजा इख्तियार किया, दुश्नाम के करीब करीब वो लबो लहजा था, उसको भी लोगों ने पसंद नहीं किया। तीसरी बात ये हुई कि वो बहुत से हलकों के अंदर कोई ऐसे जाने पहचाने मारूफ किरदार बतौर अपने अरकान या उम्मीदवार पेश नहीं कर सके। इस सब कुछ के बावजूद उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। कराची को उन्होंने जो आम तौर पर एक यकतरफा मैंडेट आता था उसको हिला के रख दिया। MQM बहुत दिफा पे चली गई और अब भी वहां मसाइल पैदा हो रहे हैं, रिगिंग के, धांधली के बड़े इल्जाम लगे। पंजाब के शहरों के अंदर उन्होंने बहुत भारी तादाद में वोट लिए, हारते रहे लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी खासी तादाद में वोट लिए, लोगों को मुतहरक भी किया, नौजवानों को मुतहरक किया, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी कामयाबी अच्छी खासी रही और इस काबिल वो हो गए कि आज वो वहां हुकूमत बनाने की भी बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो इस सारी सूरत हाल पर निगाह रखे हुए थे, हमें एक चीज़ का अंदाज़ा था, हमारे यहाँ की जो एदाद व शुमार हैं उसके तहत पंजाब के अंदर कोई 148 हलके हैं और दो इस्लामाबाद के मिला लें तो 150 हलके बन जाते हैं। कुल 272 हलकों पे इलेक्शन हो रहे थे, यानी 150 एक तरफ आप कर दीजिए और बाकी पूरा मुल्क जो था वो 122 हलकों पर मुश्तमिल था। इसका मतलब ये है कि जो भी पंजाब से जीतता है और भारी अक्सरियत ले जाता है वही पाकिस्तान पे हुकूमत करेगा। इस एतबार से हम लोग देख रहे थे कि मुस्लिम लीग नून शायद पंजाब से 100 से ज्यादा सीटें ले जाएगी और खान साहब की जमात जो है वो पंजाब के अंदर कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं मार सकेगी। अब तक के जो नतायज सामने आए हैं वो मुस्लिम लीग नून तो कोई 130 के करीब चली गई है, जबकि खान साहब के जो पंजाब के अंदर सीटें निकली हैं या जो अफराद कामयाब हुए हैं उनकी तादाद सिर्फ 7 है। तो यूं हम लोग, जो आपने सवाल किया था कि आप किस बुनियाद पे कह रहे थे, तो हम इन जमीनी हकीकतों का इदराक रखते हुए, जुग्राफिये पे नजर रखते हुए, लोगों के जहन को और ट्रेंड को देखते हुए, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए, खान साहब की यकतरफा मुहिम को देखते हुए महसूस कर रहे थे कि नतायज कमोबेश यही होंगे। मैंने तो ये फिगर्स भी अपने अंदाजे और कयास के मुताबिक लिख दी थी कुछ एक दो दिन पहले, जो कमोबेश वही नतायज आए हैं। और बहुत से आलमी इदारे और हमारे यहाँ के जो इदारे गैलप पोल वगैरह कर रहे थे उससे भी कमोबेश यही नतायज सामने आ रहे थे। तो कोई ऐसी हैरान कुन तब्दीली नहीं आई है और इल्ज़ाम जो धांधली के लग रहे हैं उनमें भी कोई सब्सटेंस नहीं है। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट आ गई, उन्होंने कहा कि 90% अच्छे इलेक्शन हुए हैं सिर्फ कराची में। पिलडेट हमारा एक बड़ा मारूफ इदारा है, उसके सरबराह से मेरी आज बात हुई, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के किसी हिस्से में कोई रिगिंग या फ्रॉड की नौबत नहीं आई। अलबत्ता सिर्फ कराची के अंदर ऐसा हुआ है जहां रिगिंग भी कह सकते हैं और फ्रॉड भी कह सकते हैं। बिलुमूम अच्छे माहौल में इलेक्शन हो गए।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर एजाज हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात की कामयाबी का क्या राज था? आया पाकिस्तान के आवाम एक बार फिर तब्दीली चाहते थे, यानी नवाज शरीफ साहब को दोबारा इख्तदार में देखना चाहते थे, या जो माजी की गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, उसकी कारकर्दगी से मायूस हो चुके थे, या जैसा कि नवाज शरीफ साहब के मुखालफीन कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड या फील्ड उन लोगों को नहीं मिल सका, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को खुली छूट थी इंतखाबी जलसे और जुलूस करने की, इस वजह से उनको कामयाबी मिली। आपका तबसरा जानना चाहूँगा।
जी शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि इरफान सिद्दीकी साहब का बड़ा माशाल्लाह रिविटिंग और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस था, और लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ कहूँगा। मैं वो नहीं कहूँगा जो वो कह चुके हैं, रिपीट हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि वो मुझसे बेहतर तबसरा उन्होंने किया उन पर। मैं उन एरियाज़ को टच करूँगा जो कि नवाज शरीफ के लिए आगे अब पिटफॉल्स नज़र आ रहे हैं, जो उनके लिए चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, और देखना हमने ये है कि आया किस हद तक नवाज शरीफ साहब और उनकी जो पार्टी है उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए कोई वो प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं। शेक्सपियर ने हेनरी द फोर्थ प्ले में बड़ा खूबसूरत एक लाइन कही थी कि अनईजी लाइज अहेड दैट वेयर्स द क्राउन। जिस सर पे ताज आ जाता है वो इतना भारी हो जाता है, अनईजी हो जाता है, ताज उतार के फेंकने को दिल नहीं करता और पहने हुए गर्दन पे दर्द रहती है। हमने देखा कि पिछली एक सदी में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए उसमें दूर ज्यादा ना जाइए, 60-70 बरस पे जाइए, जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो मैंडेट मिला था एटली को लेबर पार्टी के लिए, या उसके बाद जो मैंडेट मिला जो विंस्टन चर्चिल को दोबारा, और फिर देखिए कि 97 में जो टोनी ब्लेयर साहब को हैवी मैंडेट मिला। और ये कंपेयर करें कि बाज़ औक़ात यही हैवी मैंडेट जो होते हैं ये दर्द सर बन जाते हैं। हेनरी द फोर्थ में कहे हुए शेक्सपियर की जो बात थी कि जो क्राउन हैवी हो जाता है हेड को हैवी कर देता है, तो बाज़ औक़ात यही पॉपुलर लीडर्स जो हैं पॉलिटिकल लीडर्स इतने बड़े हैवी स्ट्रांग मैंडेट के वजन के नीचे दबकर वो बैरी हो जाते हैं और फिर कुछ नजर नहीं आता। नवाज शरीफ साहब की सबसे जो उनको स्ट्रेटेजिक एज था इमरान खान साहब, वो ये था कि नवाज शरीफ और उनके जितने भी पोलिंग एजेंट्स थे या उनके हलकों में काम करने वाले थे, जिन जिन हलकों से कामयाबियां उन्होंने ली, वो लोग पुराने खिडकारी थे, पुराने खिलाड़ी थे, और इलेक्शन इंजीनियरिंग को भी समझते थे, और उसका सबसे अहम एलिमेंट होता है मैनिपुलेशन और मेक श्योर करना कि पोलिंग स्टेशन पे अपने लोगों को लेके आना, एक तो ये फैक्टर था। दूसरा, नवाज शरीफ के साथ पास बेतहाशा पैसा है, पाकिस्तान में इलेक्शन पैसे के बलबूते पे होता है। अब कौन माइका लाल है ये जो उन्होंने 130 के करीब सीटें ली हैं, कोई भी MNA उठ के आके कुरान मजीद पे आके हल्फ सर पे दे के कह दे कि उसने 15 लाख खर्च किया है, उससे तजावज नहीं किया MNA ने, तो ये बात ये है। एक ऐसा शख्स देखिए जिसने पिछले 20 बरस में, आप देख लीजिए 1992 में से स्टार्ट हुआ इनकी जो फ्लाइट है 1990 के इलेक्शंस के बाद, 1992 में मैच्योर हो गए थे एज फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आज का नवाज शरीफ देखिए, उसकी $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया में और UAE में है, उसकी $3 बिलियन की या £2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उसकी UK में है। इस इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होता है कि UK में भी लॉबिंग होती है उनकी और यूनाइटेड स्टेट्स में भी लॉबिंग होती है, और इस दफा जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एज था वो ये था कि 7 बरस की जलावतनी सऊदी अरब में बड़ा वो रेडिकलाइज हुए।
डॉक्टर साहब मैं आपसे माफ कीजिएगा, ये जो लॉबिंग की बात की आपने के UK में या UAE में, तो जाहिर है कि ये लॉबिंग उन लोगों से होती है या उन लोगों के ताल्लुक से होती है जो मुतवसित तबकों से ऊपर के लोग हैं, लेकिन पंजाब में अगर आप देखें तो ज़्यादातर वोटर्स देही इलाकों में जिनको लॉबिंग का मतलब ही नहीं पता, जिनको जो है यही नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब के पास कितना सरमाया है, कहाँ कहाँ है, उनकी क्या तजारत है, वो तो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब को जानते हैं। तो जो देही तबके के लोगों ने उनको वोट दिया उसकी क्या वजह थी?
دیہی طبقے کا جو ہے ابھی تک ایجوکیٹ نہیں ہوا ووٹر، کیونکہ وہاں تک ذرائع ابلاغ جو ہیں ان کی لمیٹڈ ایکسیس ہے، ٹھیک ہے کافی حد تک پہنچا ہے، لیکن وہ ابھی سٹیریو ٹپیکل ہے، برادریاں چلتی ہیں، دھڑے بندیاں چلتی ہیں. میں خود ایک دیہی علاقے سے پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں پہ چار پانچ برادریاں جو بڑی ہیں، ارائی ہیں، جٹ ہیں، رانے ہیں اور رانگڑ ہیں، یہ مل جل کر ان کی لابیز ہوتی ہیں. ایک دھڑا ایک پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو دوسرا دھڑا بائی ڈیفالٹ دوسری پارٹی کے ساتھ جڑا جاتا ہے. نواز شریف چونکہ یہ پالیٹکس میں کافی دیر سے یہ لوگ ہیں، 1982 سے ایکٹیولی یہ فیملی پالیٹکس میں ہے، تو یہ دھڑے بندیوں پہ اور برادریوں پہ، کرونیز پہ، کلینزم پہ یہ چلتی ہیں. اور وہی لوگوں کو آپ دیکھیے ٹکٹس جو انہوں نے دیں وہ بھی آپ دیکھ لیجیے، جیتنے والوں میں لوگوں نے اپنی کاسٹ بھی لگائی ہیں، کوئی جٹ ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی رانا ہے. تو ان لوگوں کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے دیہی علاقوں میں. شہر میں اربن لائف میں اویئرنیس عمران خان صاحب نے پہنچا دی ہے یوتھ تک. یوتھ جو ہیں کرونیزم میں، برادریوں میں، کلینزم سے بیونڈ سوچتے ہیں اور اپنے انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. تو یہ میں یہ بتاؤں گا. پھر یہ پچھلے 5 برس جو نواز شریف کو ملے نا، نواز شریف ان ڈکلیئرڈ اپوزیشن لیڈر تھے. اس کا ان کا بھائی جو تھا وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں پاورفل جو چیف منسٹر تھا. اب نواز شریف کو ایک چانس ملا تھا، اس میں آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا ہوم ورک پورا 5 برس میں کیا. کوئی لائبلٹی بھی نہیں تھی کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر ہونے کے ساتھ انہوں نے اتنا کام کرنا ہے پارلیمنٹ میں. ان کے پاس ریسورسز پورے تھے. ریسورسز کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ پنجاب میں وہ کام کرتے رہے ہیں، اور الیکشن انجینئرنگ کے وہ ماہر ہیں نواز شریف جو ہے. اور ان 5 سال میں نواز شریف نے کافی حد تک جو ہے پیپلز پارٹی کی ویکنسز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے، لیکن پرو ایکٹیولی، کانفرنٹیشن نہیں لی نواز شریف نے، پرو ایکٹیولی چلتا رہا. اب میں دوسری طرف آتا ہوں. اب یہی ماڈل ہے، یہی پیراڈائم ہے، یہی ٹیمپلیٹ ہے جسے عمران خان صاحب کو یوز کرنا پڑے گا کہ 1988 کی طرح اچھا ہو گیا ہے کہ بینظیر نے حکومت لے لی. اگر 88 میں بینظیر اپوزیشن میں بیٹھتی تو پیپلز پارٹی ڈیلیور بھی کرتی اور 20-25 برس تک حکومت بھی کرتی. آج ایک طرح سے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. میں یہ کہوں گا عمران خان کے لیے جہاں یہ چیلنج ہے، چیلنج میں ہی اپرچونیٹیز ہوتے ہیں. عمران کے لیے ایک بڑا، ایک مونیومنٹل اپرچونیٹی ہے کہ یہ اگلے 4 یا 5 برس جتنی بھی حکومت یہ کرتے ہیں، یہ پرو ایکٹ اپنے آپ کو ری آرگنائز کرے اور اپنے کارڈز بڑا کیئرفلی کھیلے. ان کے ریلیکسڈ ہیں. یہ سمجھ دیجئے کہ جس طرح کرکٹ میں ہوتا ہے نا کہ یہ بیٹنگ سیکنڈ ٹائم پہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے رن ریٹ ہے جو لے کے انہوں نے چلنا ہے، وکٹس ان کے پاس پلنٹی آف وکٹس ان ہینڈ ہیں. یہ ایز اپوزیشن لیڈر یا ایز اپوزیشن فورس کے طور پر یہ ہوم کریں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
اب یہ میچور ہوں گے. میں آپ کو
بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. پروفیسر عرفان صدیقی صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں دھاندلیوں کی بات کی. آج ہی جب چودھری شجاعت صاحب اور ان کے ساتھی الیکشن کمیشن میں شکایت درج کرنے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی جو آخری وقت میں، پولنگ کے آخری وقت میں جو تقریر نشر ہو گئی، اس نے جو ہے وہ نتائج کو تبدیل کر دیا. کیا آپ جیسے لوگ اتفاق کرتے ہیں؟ اور یہ جو تقریر تھی، کیا یہ ضابطہ انتخابات یا اخلاق کے خلاف نہیں تھی؟
میرے خیال کے اندر یہ دنیا بھر کی ایک پریکٹس ہے، جہاں جمہوری نظام ہوتا ہے، پارلیمانی نظام ہوتا ہے، یا ایون صدارتی نظام بھی ہوتا ہے، جب ایک خاص سطح پہ جا کے پولنگ کا رجحان واضح ہو جاتا ہے، بالادستی واضح ہو جاتی ہے کہ کون سی پارٹی لیڈ کر رہی ہے، لوگ اس کے ہیڈ کوارٹرز میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، تو لیڈر ان کے سامنے آتا ہے اور گفتگو کرتا ہے، جس کو وکٹری سپیچ کا نام دیا جاتا ہے. یہ وکٹری سپیچ نتائج پہ اثر انداز اس لیے نہیں ہوتی کہ پولنگ ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں اور آپ کوئی نیا ووٹ نہیں ڈال سکتا کہ وہ تقریر جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو. جہاں تک پاکستان کے ووٹنگ میکنزم کا تعلق ہے، اس میں بڑی اصلاحات ہوئی ہیں. ہمارے ہاں نادرا کے ادارے نے بڑا کام کیا ہے. آپ کو یہ سن کے شاید حیرت ہو کہ ہمارے ہاں جو پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر پولنگ کی لسٹیں رکھی ہوئی تھیں، ہر فرد کا، ہر ووٹر کا جہاں نام تھا اس کے سامنے اس کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی دوسرا آدمی آ کے اس کا ووٹ پول نہ کر سکے.
جی
پہلی بات.
پروفیسر صاحب
دوسری بات یہ
جی
کہ ہر آدمی
صاحب
کو اپنا شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ جو گورنمنٹ نے جاری کیا ہوا ہے وہ لے کے جانا تھا، اور وہ پولنگ آفیسر اس کو ملاتا تھا کہ ہاں یہ وہی شخص ہے جس کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور اس کو دیکھتا تھا. تیسری بات، وہ اپنے انگوٹھے کا نشان اس پہ ثبت کرتا تھا، और अंगूठा वो उसके निशान की जो एक एक अहमियत है कि नादरा के अंदर अगर वो आप अंगूठा ले जाएंगे तो वो आपका पूरा शजराए नसब बता देगा कि ये शख्स कौन है। वहाँ धांधली का या गलत वोटिंग का 1% भी इम्कान नहीं है।
फिर प्रोफेसर साहब बात ये हो रही है, प्रोफेसर साहब बहुत माजरा चाहता हूँ आपसे,
वहाँ हर उम्मीदवार को,
प्रोफेसर साहब
उम्मीदवार को अपने दो दो एजेंट बिठाने का इख्तियार होता है जो देखते रहते हैं कि कोई इररेगुलरिटी ना हो। फिर चौथी बात यह है कि ट्रिब्यूनल मुकर्रर हैं, अगर कोई बेकायदगी आप शवाहद के साथ ले आते हैं तो वो फैसला करते हैं कि हाँ जी बेकायदगी हुई है। सो 1% भी धांधली का कोई इम्कान नहीं है। कराची में हुआ है, यूरोपीय यूनियन के मुबसरीन ने भी कहा है, पिल डैट ने भी कहा है और हमारे प्रेस ने भी कहा है। यहां पूरे पाकिस्तान के अंदर, बाकी मादा पाकिस्तान के अंदर, बशमूल पंजाब, बशमूल खैबर पख्तूनख्वा, बशमूल बलूचिस्तान, ये शिकायत नहीं आई है कि कोई रिगिंग हो रही है, कोई धांधली हो रही है। ये हुआ किस वक्त है? ये उस वक्त हुआ है जब बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे थे नौजवान, और हमारे मीडिया ने, हमारे जो जो आप कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खास तौर पे एक फजा बना रखी थी, एक ख्वाब दे दिया था कि हम जीतने वाले हैं। वो ख्वाब जब टूट गया तो उन्हें मायूसी हुई और वो अब तक ये समझते हैं कि शायद धांधली हो गई। जब आप उनसे कहें कि जनाब आप धांधली का कोई एक प्रूफ ले आएं, तो कोई नहीं है किसी के पास। आज भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई ऐसी चीज है तो शवाहद लेके आएं। सो मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह की कोई बात हुई है या नवाज शरीफ साहब की तकरीर का कोई असर हुआ है।
बहुत शुक्रिया आपका।
जो एजाज साहब ने कही है, मैं उन इल्जाम पे नहीं जाता कि किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट बार है, ना मेरे पास कोई शवाहद है, तो सुनी सुनाई बातें कह देना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होता आलमी लीडरों के बारे में। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो आप कहते हैं जी कि देहात में ना खानदा लोग हैं और शहरों में बड़े खानदा लोग हैं, कौन से शहर में खान साहब ने कामयाबी हासिल की है? 13 सीटें थी लाहौर की कौमी असेंबली की, एक सीट पे उनका एक फर्द जीत गया है, 12 सीटों पे नून लीग जीत गई है। फैसलाबाद हमारा बहुत बड़ा शहर है, 11 कौमी असेंबली की नशस्तें हैं उसमें, 11 की 11 मुस्लिम लीग नून ने जीत ली है, एक भी नशस्त वो नहीं जीत सके। पिंडी से एक नशस्त उन्होंने जीती, इस्लामाबाद से एक नशस्त जीती, वो शहरों में भी हारे उतनी ही कामयाबी के साथ हारे जितने वो देहात में हारे। लिहाजा शहरों और देहात में कोई तख्सीस नहीं थी, जिन्होंने शेर की तरफ जाना था, मुस्लिम लीग नून की तरफ जाना था, वो लोग गए हैं, बिला तख्सीस गए हैं। अब ये कि क्यों ऐसा हुआ है, 5 साल की कारकर्दगी लोगों ने देखी है, लोगों ने एतमाद किया है एक जमात के ऊपर, उसकी खिदमात को सराहा है और कहा है कि ठीक है तुमने पंजाब में कारकर्दगी दिखाई है, अब हम तुम्हें इख्तियार देते हैं कि तुम मरकज में भी जाओ और पूरे पाकिस्तान।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, मैं फिर आज
अवामी राय जो है उसकी तहकीर नहीं करनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सज्जादुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम।
सज्जादुल हसन साहब, 5 साल की कारकर्दगी देखने के बाद हमारे जो इस्लामाबाद स्टूडियो मेहमान, उनका कहना है प्रोफेसर इरफान सिद्दीकी साहब का कि 5 साल की हुकूमती कारकर्दगी देखने के बाद आवाम ने नवाज शरीफ साहब को मैंडेट दिया, उन पर भरोसा किया है, क्या आपकी कारकर्दगी इतनी मायूसकुन रही कि इतनी बड़ी शिकस्त आपको खानी पड़ी, क्या वजह आप इसको तस्लीम करते हैं?
देखिए जी, बात यह है, सबसे पहले तो मैं नवाज शरीफ साहब को और उनकी पार्टी को मुबारकबाद देता हूं कि इलेक्शन में उन्होंने कामयाबी हासिल की, मगर इधर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मुहर्रकात चल रहे हैं जिनको पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा। मसलन पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, कभी मीडिया पर, कभी हेल्थ के हवाले से, कभी एजुकेशन के हवाले से, कभी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, कभी पंजाब में लाहौर के अलावा बाकी सिटीज के हवाले से डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पर, क्या कभी मीडिया पर इस हद तक डिबेट हुई जिस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, वफाकी हुकूमत के हवाले से, गुड गवर्नेंस के हवाले से, बैड गवर्नेंस के हवाले से डिबेट होती रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट? इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एनर्जी क्राइसिस से निमटने में काफी मुश्किलात का सामना रहा, चूंकि दहशतगर्दी का सामना रहा, चूंकि 2 दफा सैलाब आए मुल्क में, तो इस बात से मैं डिनाई नहीं करता कि इसमें कुछ हमारी कारकर्दगी का अमल दखल भी है, इस बात में कोई शक नहीं, मगर ये बात भी कोई इतनी रोजे रोशन की तरह याद नहीं है और इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और इतनी हकायक पर मबनी नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट की को गुड गवर्नेंस थी। गुड गवर्नेंस का आलम तो सबको सामने आया है, मुझे अफसोस इस बात पे है कि गुज़श्ता 5 साल में पंजाब गवर्नमेंट के इश्यूज पर कभी भी मीडिया ने डिबेट डिटेल में इश्यूज पर की ही नहीं। चले टाइम आ गया, पंजाब गवर्नमेंट भी इनके पास ही आ गई, वफाकी हुकूमत भी आ गई, तो ये अब आपके सामने आता जाएगा कि सिचुएशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे चलती रही है, कैसे आती रही है। अब ये तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी की इस वफाक में हुकूमत है और उसकी आड़ में पंजाब में जो भी सब मादर पिदर आजाद सिस्टम चलता रहे तो कोई पूछने वाला ना, और इवन मीडिया भी उन्हें सपोर्ट करता रहे, ऐसा ना अब होना है तो ना हो सकेगा। तो हम तो इसी बात पर है कि हमारी तरफ से अगर गुड गवर्नेंस का जो है वो नहीं एक्ट किया गया तो चले उसका हमने सफर किया है, पब्लिक ने हमें रिजेक्ट कर दिया, मगर जहां तक इंतखाबात की बात है तो इंतखाबात में ओवरऑल सिचुएशन बेहतर रही है। मगर एक बात यहां पर मैं करता चलूं कि जो कादरी साहब कह रहे थे कि स्क्रूटनी का टाइम जो है वो कम से कम 1 महीने होना चाहिए, अब आप देखें NA144 उकाड़ा से जो कैंडिडेट कामयाब हुआ है उसकी हल्फन ऐसे की सनद ही जाली है, उसने पहले पिछले इलेक्शन में ऐसे की सनद लाहौर बोर्ड की लगाई, इस दफा उसकी ऐसे की सनद वहां पर लाड़कना बोर्ड की लगी हुई है कि एक बंदा, और 99 में लाड़कना बोर्ड में पेपर हो रहा है उर्दू का और वो पंजाब असेंबली में बैठा है। कोर्टों ने इस बात को भी इग्नोर किया, पता नहीं वो नून लीग का कैंडिडेट था या उसको कोई स्पेशल फेवर थी इस हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हमारे कैंडिडेट्स के पेपर्स रिजेक्ट होते रहे, एक्सेप्ट होते रहे, रिजेक्ट होते रहे, ऐसे अब हाम में ये सारा सिलसिला मामला चला। तो इधर कुछ कुशुभात जरूर जन्म लेते हैं, कई पोलिंग स्टेशन पर 200% वोट पड़ गए, कई पोलिंग स्टेशन पर 300% वोट पड़ गए, मगर मैं ओवरऑल इसको कहता हूं कि कंपैरेटिवली अगर इसको हम देखें पिछले इलेक्शन के साथ कंपेयर करें तो मैं समझता हूं ये इलेक्शन पिछले इलेक्शन की निस्बत कुछ बेहतर हैं और बेहतर हुए हैं, मगर ये चीजें भी जो है इनको भी तो हमें अभी बेहतर की बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा कि एक आदमी फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड करके आ रहा है और उसको कोर्टों ने रिलीफ दिया, लास्ट स्टेज तक इन चीजों की बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए अभी हमें मजीद काफी कुछ करना है। और मैं समझता हूं कि आइंदा से स्क्रूटनी के लिए मुनासिब टाइम दिया जाए, कम से कम 1 महीने का टाइम तो हो ताकि तमाम A to Z वेरिफिकेशन हो सके कैंडिडेट से मुतल्लिक कि कम से कम 62-63 को जो है फुलफिल करने वाला बंदा ही कैंडिडेट आ सके और 62-63 पर जो है पूरा उतरने वाला बंदा ही कैंडिडेट बने। तो जहां से सिस्टम को हम बेहतर करते जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हम बेहतरी की तरफ चलते जाएंगे, अगर हम नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगा।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में। अब चलते हैं एक बार फिर लंदन स्टूडियो जहां पर मौजूद हैं डॉक्टर एजाज साहब। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो कल एक बयान आया नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने खारजा पॉलिसी के ताल्लुक से भी गुफ्तगू की खुलकर और दाखला पॉलिसी के ताल्लुक से भी, उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ संजीदगी के साथ मुज़ाकरात होंगे और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के बारे में कहा कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे और आइंदा भी बहुत अच्छे रहेंगे। तालिबान ने 3 जमातों को ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट और साथी काबिली को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया कि ये अमेरिका के इत्तेहादी थे। नवाज शरीफ के इस बयान के बाद बहुत से लोग ये सवाल करने लगे हैं कि मियां साहब कैसे एक न्याम में 2 तलवार लेकर चल सकेंगे कि तालिबान से भी वो बातचीत करेंगे और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हमवार उसी तरह से रखेंगे जैसा कि कभी उनके हुआ करते थे, और तालिबान ने इनको जो निशाना नहीं बनाया वो इसलिए कि तालिबान ने इनको अपना गारंटर तस्लीम किया था। कितनी मुश्किल पेश आ सकती है इन दोनों नुक्तों को एक जगह जमा करने में जनाब नवाज शरीफ साहब को?
जी शुक्रिया, मैं सबसे पहले बताता चलूं कि नवाज शरीफ साहब को सबसे ज्यादा सरूर पैलेस में जद्दा में मैं विजिट किया करता था बड़ा रेगुलरली पिछले 10 बरस के अंदर, और उसके बाद जब वो पार्क लेन में लंदन में आ गए तो फिर भी रेगुलर उनसे और शहबाज साहब से मेरी मुलाकातें होती रहती थी। नवाज शरीफ साहब जब रहे हैं ना कुछ 7 बरस जलावतनी में, सन 2000 से 2007 तक जद्दा में, रुवेस में, सरूर पैलेस में, तो ये रेडिकलाइज हुए। पहले ये ब्रेलवी थे, फिर देवबंदी हो गए, फिर ये प्रो सेल्फी ये आ गया, अमेरिका की एक माइंडसेट है, अमेरिका की एक स्ट्रैटेजी है कि अमेरिकन किसी मुस्लिम कंट्री पे जब अपना उन्होंने एजेंडा पूरा करना होता है और किसी तरह से भी वो काबू नहीं आ रहा होता डाइवर्जेंट पॉलिटिकल ट्रेंड्स इंटरनल्स की वजह, पाकिस्तान जैसा कंट्री है, तो वो सऊदी अरब को इस्तेमाल करते हैं, खादमैन हरमैन शरीफैन का प्रेशर करते हैं। अब नवाज शरीफ साहब 7 बरस जो रुवेस में रहे हैं जद्दा के गवर्नर के पैलेस में, तो वहां ये काफी हद तक इनमें सऊदी छाप आई। इनका जो मेन ड्राइंग रूम है जहां ये लोगों को रिसीव करते हैं वहां पे रायविंड में, वहां फोटो देखें तो सऊदी फरमारवा की लगी है और वहां पे ये हमाद जो खलीफा है कतर का इसकी लगी है, यूएई के लोगों की लगी है। बात मकसद ये है कि चूंकि जब से दोहा में तालिबान और यूएस के दरमियान निगोशिएशन का हेडक्वार्टर बना है, उसे खलीफा हमाद जो कतर का है वो होस्ट करता है, पैसे भी वही डिलीवर करता है, तो फजलुर रहमान जैसे एलिमेंट जो हैं उनका यहां आना बहुत ज्यादा, दोहा में हर 3-4 माह के बाद फजलुर रहमान साहब भी आए रहते हैं। नवाज शरीफ साहब को एक तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि सऊदी अरब की वजह से एक वो दियोबंदी और रायविंड का और रायविंड की प्रीचिंग और वो एक इनको सपोर्ट मिलेगी सऊदी अरब की तरफ से, तो ये तालिबान के साथ निगोशिएट करने में इनको थोड़ा स्ट्रेटेजिक एज मिलेगा, नंबर एक ये है। नंबर दो, जब ये इवन के सऊदी अरब में रहे हैं तो इनकी जो दोस्तियां, इनके खाने बड़े रेगुलर होते थे। ये तलमीज अहमद जो 4 साल 5 साल इंडिया का एम्बेसडर रहा सऊदी अरब में, फिर MOH फारूक जो है, तो इसका एक उनके साथ भी जो दोस्ती रही, इंडिया अपना मुसलमान एम्बेसडर भेजता होता है सऊदी अरब में, तो इंडिया के साथ रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में ये लोगों का बड़ा रोल प्ले होगा। और इंडिया और सऊदी अरेबिया के बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, सऊदी अरेबिया इंडिया को बहुत चीप जो है वो ऑयल दे रहा है और $20 बिलियन सालाना से ज्यादा तिजारत है सऊदी अरब और जो है इंडिया के माबैन। लेकिन मसला यहां पे है, फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन आपने किया, अब नवाज शरीफ साहब का ही जो टेस्ट है वो ये है कि क्या वो प्रॉमिस जो उन्होंने किया था कि ड्रोन्स को आएंगे, तो इस पे ये है कि इसका जवाब मैं सीधा कहूंगा कि नो, उनमें कैपेसिटी इस चीज की नहीं है। आप देखिए पिछले बरस जो है वो अमेरिकन कांग्रेस ने पास किया एक बिल डिफेंस कट का, $739 बिलियन का सालाना डिफेंस का बजट होता है, उनकी कांग्रेस के जो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो स्पीकर हैं उनके जॉन
बेलर, आपके खिदमत में कुछ मुश्किलात पैदा आ रही हैं रास्ते में, मैं फिर आऊँ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। प्रोफेसर साहब, आपने इनकी गुफ्तगु सुनी डॉक्टर एजाज साहब की लंदन में फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से, तो कैसे ये तवाजुन बरकरार रख पाएंगे तालिबान के साथ मुजाकरात में और फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात में, और जो हिंदुस्तान के ताल्लुक से उन्होंने कहा है कि हम अच्छे रिश्ते बरकरार करेंगे, ये सारी चीज़ें लेकर वो कैसे किस तरह से चल पाएंगे, जबकि आपने अपने गुफ्तगू में कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के साथ बराबरी के ताल्लुकात नहीं रख पाई और इसकी वजह से भी उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा।
देखिए मैं समझता हूँ अभी हुकूमत बनेगी बहुत से पहलू सामने आएंगे, अभी जो इब्तदाई गुफ्तगू उन्होंने की है, कल भी उन्होंने फॉरेन मीडिया से बातचीत की है, आज अमेरिकन सफीर भी उनसे मिले हैं, मेरा ख्याल ये है जो जो अब तक उनकी गुफ्तगू से वाजे हो रहा है कि वो किसी भी मुल्क से, खासतौर पे पड़ोसी ममालिक से, ईरान से, सऊदी अरब से, अफगानिस्तान के हवाले से, तुर्की के हवाले से वो एक खास सोच रखते हैं, वो पहले भी उनके पहले अदवार में भी उस सोच का अक्स नज़र आता रहा है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि वो तालिबान के साथ गुफ्तगू अगर करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं और उधर अमेरिका से करते हैं, तो अब जिस जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें अमेरिका खुद रास्ते तलाश कर रहा है तालिबान से मुज़ाकरात में। अगर उन्हें कोई ऐसा हुक्मरान मिलता है, यहाँ के सफारती हलकों से हमारा ताल्लुक रहता है, वास्ता रहता है, और वो ये महसूस करते हैं कि अगर कोई फर्द दरमियान का एक राबता बन सकता है पाकिस्तान के अंदर जो जो तालिबान के लिए भी काबिल कबूल है या उनसे गुफ्तगू कर सकता है, जो अमेरिका के साथ मामलात कर सकता है, जो सऊदी अरब के साथ भी एक रिश्ता रखता है, जो हमारे बलूचिस्तान के मसाइल हैं बलोचों के साथ एक रिश्ता रखता है, और दाखली तौर पर भी उसको एक कबूलियत आमा हासिल है और खारजी तौर पर भी एक असर और रसूख का हामिल है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि तालिबान से मुज़ाकरात करना अमेरिका की मुखालिफत ठहरेगा या मुखालिफत करार पाएगा, या अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने का मतलब ये होगा कि तालिबान के साथ लड़ाई की जाए उसी तरह जिस तरह हम करते चले आ रहे हैं इतने अरसे से, एक तवाजुन आ जाएगा। अमेरिका जब खुद कभी कतर प्रोसेस के जरिए, कभी किसी और प्रोसेस के जरिए राबते की राहें तलाश कर रहा है, और वो यहाँ से एक साल के अंदर अंदर वापसी का उसे कॉरिडोर भी चाहिए, सलामती के साथ यहाँ से निकलना भी चाहिए। पाकिस्तान की एक अहमियत है, पाकिस्तान की एक अफादियत है, उसके लिए पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत उसको सलामती का रास्ता देगी कि वो अपने लाओ लश्कर के साथ यहाँ से वापस जा सके, तो वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ एक काबले अमल रिश्ता यकीनन अमेरिका उस्तवार करना चाहेगा। और उस काबले अमल रिश्ते के अंदर अगर यहाँ की हुकूमत ये समझती है कि तालिबान के साथ कश्मकश, लड़ाई, कत्लोगारत गरी हमने 10-11 साल कर रही, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, अब हमें मामलात किसी और तरीके से हल करने चाहिए या करने दीजिए, तो अमेरिका उसके रास्ते में शायद रुकावट नहीं बनेगा, क्योंकि अमेरिका यही चाहता है कि यहाँ ऐसी फजा पैदा हो जाए कि वो अमन वाश्ती के साथ यहाँ से निकल जाए और वहाँ पे जिस अफगानिस्तान को वो छोड़ के जाएगा किसी हद तक उसकी प्रेजेंस वहाँ रहेगी, वहाँ अमन कायम रहे। तो उस अमन के क्याम के लिए अगर पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलके अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकता है तो अमेरिका को उसमें कोई मजाहमत करने की जरूरत नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरा ख्याल है पैदा नहीं होगा। और ये पुरसरात एक अच्छा लीडर अगर यहाँ पर मौजूद है जिसे पब्लिक के अंदर भी हमायत हासिल है तो वो ये कर गुजरेगा।
बहुत शुक्रिया आपका। सज्जाद हुसैन साहब आप मेरी आवाज सुने? जी सज्जाद हुसैन साहब
जी जी
हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कल से अब तक के आपकी जमात के कई सीनियर लीडर अपने पार्टी अहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सूबाई सदूर से इस्तीफे तलब कर लिए, क्या कोई तश्कीलें न हुआ चाहती आपकी पार्टी में?
जी ये बात तो नेचुरल अंडरस्टूड है कि जो हमारे प्रोवेंशियल सदूर हैं, हमारे चेयरमैन ने उनसे इस्तीफे तलब किए हैं, क्योंकि पार्टी की इस हद तक जो रिजल्ट्स आए हैं दैट इज वेरी हॉरिबल, दैट इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। तो इस हवाले से पार्टी की अब तश्कीले नौ भी होगी और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ सूबाई सदूर ही नहीं बल्कि ये डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, यूनियन काउंसिल लेवल तक आना चाहिए, हमें वहां से ही इसको तंजीमें नौ करते हुए ऊपर तक आना चाहिए ताकि फ्यूचर में हम एक यंग ब्लड के साथ, नौजवानों के साथ इस पार्टी में नई रूप होंके। और ये ख्वाहिश हमारे चेयरमैन की होगी क्योंकि हमारे चेयरमैन भी यंग हैं और उनकी ये ख्वाहिश होगी कि यंग जो लोग हैं उन्हीं को मैक्सिमम शामिल करें और जो सीनियर्स हैं उनकी गाइडलाइन लेते हुए मामलात को आगे की तरफ बढ़ाए। और आप देखेंगे कि नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर कम बैक करेगी। आप इसकी हिस्ट्री उठा के देख लें कि ये इस बात की गवाह है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी 97 में 17 MNAs के साथ पाकिस्तान कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर बैठी थी, मगर 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कम बैक किया। तो इंशाल्लाह हम दोबारा कमिंग इलेक्शन में कम बैक करेंगे और इसको रीऑर्गेनाइज करके और इसको मैनेज करेंगे अल्लाह के फजल से।
जी एक छोटा सा सवाल और मुख्तसर सा जवाब चाहूँगा, क्या ये हकीकत है जैसा कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि अमरीका के साथ आपकी हुकूमत बराबरी के ताल्लुकात नहीं रख पाई थी?
नहीं ये बात मैं इसको ऐसी बात नहीं समझता, ये कतन ऐसी बात इस बात में कोई इस बात में हकाक पर मबनी ये बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अमेरिकन के साथ बराबरी की सतह पर ही तल्लुकात को उस्तवार किया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो बराबरी की सतह पर ही अमेरिकन के साथ चलती आई है।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा खत्म हो चुका है
जो है वो हकीकत नहीं है।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। बहरहाल हुकूमत साजी का अमल अब शुरू हो चुका है और नवाज शरीफ साहब ने इत्तला दी है कि सिंध और बलूचिस्तान में अपने नुमाइंदे भी भेज दिए हैं मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से बातचीत के लिए। बहरहाल अगले चंद दिनों में एकदम और बिल्कुल से तस्वीर साफ हो जाएगी और सब कुछ हुकूमत साजी के ताल्लुक से आपके सामने पिक्चर आया हो जाएगी। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बासी जी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।